खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदा के मोहतबर कलाम में से सीखें, आए हम चंद लम्हों के लिए खामोशी में खुदा के हुजूर झुक जाएंगे, ताकि खुदावंद के कलाम की हिकमत और दनाई और उन मकाशफों को जो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा पाकरू की रहनमाई ही में समझ आ सकते हैं, उसकी रहनमाई को मांगेंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यर्मिया कहता है कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक कि मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा। खुदावंद का बंदा यकूब कहता है कि जिस किसी में हिकमत की कमी हो वो मांगे, खुदावंद बगैर मलामत के उसे देगा। सो आए हम उस खुदावंद को जो रहम करने वाला है, मेहरबान है, खुदावंद की हिकमत और दनाई मांगे। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू रहम दिल है, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरी रहमत का चश्मा कभी भी हमारी जिंदगियों में बहने के लिए रुकता नहीं। तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे फजल की बारिश हम सब पर बरसती रहती है, और जैसे हम कमज़ोर होते हैं, हम पालूस की तरह कहने वाले बन सकते हैं कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है, जो मेरी कमज़ोरियों में मुझे जोर बख्शता है, ताकि मेरी कमजोरियों में मेरी नहीं बल्कि तेरी ताकत जाहिर हो। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा बाप हम सबको बड़ी बरकत दे, और तेरा बेटा यीशु मसीह नाम हमारे दिलों के तख्त पर बादशाह के तौर पर बैठे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें आज सुबह नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका तीसरा बाब। हम उसकी पहली आयत से पांचवीं आयत तक पढ़ेंगे, और खुदावंद के कलाम में से इस हिस्सा में से जहां पर पालूस रसूल उस भेद के बारे में बात करेगा जो ना कभी फरिश्तों पर जाहिर हुआ था, ना किसी और उम्मत पर, ना किसी और पर, वो ऐसा भेद जो पोशीदा था। ये हवाला हमें नए अहदनामा में इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका तीसरा बाप पहली आयत से हम पढ़ेंगे। और पालूस रसूल इस बाप में उस भेद, उस सच्चाई, उस राज के बारे में बात करेगा जो बहुत से जमाने के लोगों पर अयां नहीं हुआ था। और पालूस यहां पर कहता है, इसी सबब से मैं पालूस, जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यसू का कैदी हूं, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ, चिनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आज हम बात करेंगे तीसरी आयत में से कि पालूस कहता है, यानी ये कौन से भेद के बारे में वो बात करता है। हमने कल देखा था और आज भी याद दहानी के तौर पर, भेद किसे कहते हैं?
बात को जानना,
समझना, और भेद कह सकते हैं कोई राज जिसके बारे में किसी को इल्म ना हो, छुपी हुई बात जिसके बारे में किसी को समझ ना हो, या जिसे कह सकते हैं, बहुत दफ़ा कहते हैं कि किसी को किसी खजाने के बारे में पता हो, किसी और को उसके बारे में ना खबर हो, यानी उस नामालूम बात के बारे में खबर होना। सो पालूस रसूल इस भेद, इस राज को जानता था, और पालूस रसूल इन राज की बातों से वाकिफ था, और वो अपनी जिंदगी से लोगों के बाकौल, लोगों के मुंह के बातों के मुताबिक क्या था? वो भेतों का जानने वाला गिना जाता था। मेरे साथ एक हवाला निकालें, नेहनामा में से दूसरा करंथियों उसका चार बाप उसकी पहली आयत। पालूस रसूल अपने दौर की कलीसिया में भेतों का मकाशफाओं का जानने वाला था। मेरे साथ निकालें जी दूसरा चौथा बाप नहीं, पहला करंथियों चौथा बाप उसकी पहली आयत निकालें। दूसरे करंथियों चौथे बाप को हम बाद में देखेंगे। पहला करंथियों उसका चार बाप उसकी पहली आयत में पालूस रसूल जब कलीसिया में उन लोगों से उसका वास्ता है जो उसके पीछे आकर झूठी बातों और बहुत सी फरेब के जाल बुनते थे और कलीसिया को बहकाते थे, तो पालूस रसूल इन बातों का सामना करते हुए उनको ये बात याद दिलाता है और कहता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने खुली किताब की मानद है। और चौथे बाब की पहली आयत में कहता है, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझें। और यहां मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले, लेकिन मेरे नजदीक ये नहायत खुफिया बात है कि तुम या कोई इंसान मुझे परखे, बल्कि खुद भी मैं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदा है। पस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन करेगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदावंद की तरफ से होगी। ये पूरी बात पढ़ने का मकसद ये है, पालूस रसूल उनको याद दिलाता है कि तुम फैसला करने में जल्दी ना करो, तुम मेरी जिंदगी से वाकिफ हो, क्योंकि करंथस की कलीसिया में बहुत से बहरूपी है जिसे कहते हैं, जो पालूस के पीछे आते थे और खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को, उस भेद को बदलते थे। और पालूस रसूल उस भेद के बारे में बात करता है जो कहता है कि तमाम नस्लों से, कबीलों से, जमानों से पोशीदा था। अब क्या कहता है वो भेद? खुदावन खुदा ने नबियों और अपने रसूलों पर जाहिर कर दिया है। किसके वसीला से? रूह के वसीला से। मेरे साथ एक और हवाला निकालें, नए अहदनामा में से रोमियों उसका 16वां बाप। रोमियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 16वां बाप उसकी 25वीं आयत। यहां पर भी वो यही बात करता है रोमियों की कलीसिया से, उनसे मुखातब होते हुए, कि जो बातें, जो सच्चाई मैंने तुमको अभी अभी बयान की है, वो सच्चाई क्या बयान करता है? 12वें बाप में वो कहता है, अपने आप को जिंदा कुर्बानी की तरह, उस बेऐब बर्रे की तरह, अपने बदनों को, अपनी जिंदगी को खुदावंद के हजूर पेश करो ताकि वो तुमको इस्तेमाल करे। 8वें बाप में वो कहता है कि अब तुम सजा के हकदार नहीं, बल्कि मसीह यसु में कौन हो? उसके बेटे और बेटियां हो। 13वें बाप में वो सिखाता है हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। 15वें बाप में वो कहता है कि हमें मसीही होते हुए मसीह जैसा मजाज रखने की जरूरत है। और 16वें बाप में वो तमाम बरकात जो हमें गैर कौम होते हुए, हम सब यहूदी नहीं हैं, क्या यहां पर कोई यहूदी है? हम यहूदी नहीं, लेकिन हम कौन थे? कहीं ना कहीं से हमारे बाप दादा ने यीशु मसीह के कलाम को सुना और मसीह के लोग बने। तो पालूस 16वें बाप में यही कहता है कलीसिया से बात करते हुए। और जो कलीसिया रोमिया में थी वो क्या थी? बहुत से रूमी थे, बहुत से दूसरे इलाका के रहने वाले थे, बहुत से फरीसी थे, बहुत से दूसरे मजहब से और कह सकते हैं कबीलों से उनका तल्लक था। बच्चों गौर से सुनो, शोर नहीं डालना आपने। फिर वो 25वीं आयत में कहता है उनको ये तमाम बातें लिखते हुए, कहता है अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो अजल से पोशीदा रहा। यीशु मसीह के बारे में तमाम नबियों को इलम था, लेकिन वो उस सच्चाई से वाकिफ नहीं थे कि यीशु पर ईमान लाने से क्या वकूं में होगा, क्या क्या हो जाएगा। और वो भेद क्या था कि खुदा इंसान के अंदर सुकूनत करेगा। पुराने नामा में हमें कोई ऐसा हवाला या कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिसमें खुदा मुस्तकिल तौर पर इंसान के अंदर सुकूनत करता हो। दाऊद पर देखते हैं, जबूर 51 में दाऊद जब गुनाह में गिर जाता है तो वो कहता है कि अपनी रूह को मुझसे जुदा ना करना। क्यों? क्योंकि वक्तन बा वक्तन खुदा का रूह अपने लोगों पर ठहरता था। सैमसन, खुदा का जिसे शेर भी कहा गया है, उसके बालों में उसकी ताकत थी। खुदा ने उसे ये बरकत, उसे ये तोहफा दिया था कि जब कभी भी वो किसी मुश्किल में होता था तो वो उस रूह से जो खुदा का रूह था बरता था और अजीब अजीब काम करता था। शेरों का वो मुंह फाड़ देता था। और फिर बहुत दफा जिक्र मिलता है कि छोटे छोटे हथियारों से, खोते की जबड़े से और दूसरे हथियारों से हजारों को वो कत्ल कर देता था। और अगर दूसरे होते थे रस्सों को वो 1 मिनट में तोड़ देता था। वो किस तरह करता था? लिखा है बार बार जब भी खुदा का रूह उस पर आता था। सो पुराना अहदनामा हमें इस बारे में बताता है कि कोई भी मुस्तकिल तौर पर खुदा के रूह से मामूर नहीं था। खुदा का रूह आता था, इस्तेमाल करता था और फिर उनसे जुदा हो जाता था। फिर खुदा हमें खैमों में नजर आता है, फिर खुदा हमें बियाबान में उनके साथ नजर आता है। सो कहने की बात यह है, पुराने अहदनामों में कहीं पर भी खुदा इंसान के अंदर सुकूनत करता हुआ नजर नहीं आता। और पलूस कहता है ये वो भेद है जो मकाशफा है, जो अबद से ही इब्तदा ही से खुदा ने अपने आप में पोशीदा रखा कि एक वो वक्त आएगा जिसमें इंसान खुदा के रूह से भरेगा और खुदा का रूह उसमें सुकूनत करेगा और वो यीशु मसीह का बदन ठहरेंगे और यीशु मसीह उनका दुल्हा बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी, यहूदी यही सोचते थे कि हम ही वो नस्ल हैं, हम ही वो चुने हुए लोग हैं, इसके अलावा खुदा किसी और पर नजर नहीं करेगा। तो क्या हुआ? मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 3रा बाब। वहां पर पालूस कहता है कि ये भेद क्या है। 3रे बाब की 6 आयत में वो इस भेद को बयान कर देता है। 5वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। वो कहता है जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था। ये वो भेद जो बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, मगर अब वो कहता है उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। पालूस रसूल है जो इस भेद के बारे में जानता था, क्योंकि जब यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से बात कर रहे थे कि आज रात मैं तुम सब के साथ हूं और वो वक्त आने वाला है जब मैं तुमसे जुदा होऊंगा और रूह आएगा, क्योंकि रूह अभी तक नाजल नहीं हुआ था। आप ये हवाला देखना चाहते हैं, मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील गालबन उसके 7वें बाप में हमें ये जिक्र मिलेगा। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उनको यही बात सिखाते हैं। और ये वो रात है, ये वो दिन है, ये वो वक्त है जब ईद फसा का हफ्ता जारी था। लोग ईद के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे और यीशु मसीह ने हैकल में खड़े होकर ये बात कही। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाप उसकी 37वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इसका तल्लक बड़ा गहरा है इस भेद के साथ जो उस वक्त के शिगिर्दों पर भी अभी तक जाहिर नहीं हुआ था। शागिर्द भी इस हकीकत से पूरे तौर पर वाकफ नहीं थे। यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाप उसकी 37वीं आयत में लिखा है, फिर ईद के दिन, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन था, खास दिन है, यसु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसे किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी, यानी कि वो अपने अंदर ऐसी कुदरत और ताकत रखेगा जो जिंदगी की उस सच्चाई तक ले जा सकता है। जैसे वो कुवे पर आई हुई सामरी औरत, अगर तेरे पास जिंदगी का पानी है तो मुझे दे था कि मुझे भरना ना पड़े। यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी का पानी मैं हूं। तो यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और यीशु मसीह ने ये जिंदगी के पानी की नदी किसको कहा है? रूहुल कुद्दस को। क्यों? 39वीं आयत में लिखा है, यीशु ने यानी उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। शागिर्द भी हम देखते हैं कि अभी तक रूहुल कुद्दस से मामूर, जब यीशु मसीह ने रूह फूंका तो उन पर रूह ठहरा और फिर मुस्तकिल तौर पर उनमें रूह अभी तक नहीं है, खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है अपने जोर से। और क्या हुआ? यीशु ने कहा, यीशु ने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाएंगे, क्योंकि रूह अब तक नाजल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। आपको याद होगा कि ईद पेंतिकोस के दिन क्या हुआ? वो दिन था जिस वक्त यीशु मसीह ने कहा कि तुम रूहुल कुद्दस से भरोगे और कुवत पाओगे और खुदा का रूह तुम पर ठहरेगा और तुम सामरिया, यहूदिया, यरूशलम, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। सो पालूस रसूल इस बात को कहता है कि वो बात जो ना आदमियों पर पहले जाहिर हुई थी ना किसी और पर, लेकिन अब उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में जाहिर होगी है। और वो भेद क्या था? कि लोग ना के सिर्फ रूहुल कुद्दस पाएंगे बल्कि उसका बदन बनेंगे और सबसे बढ़कर गैर कौम में यीशु मसीह की मीरास में शामिल होंगी। 6 आयत में यही लिखा है। पालूस कहता है, यानी ये भेद क्या है रूहुल कुद्दस के साथ और क्या होगा? यानी ये के मसीह यीशु में गैर कौम में खुशखबरी के वसीला से मीरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। और ये बात सच है, हम सब किसी ना किसी कबीले से, कहीं ना कहीं से हमारी जड़ें शुरू हुई, और ये हम कह सकते हैं कि हम यहूदी नहीं, हमें यहूदी खून नहीं, हम यहूदी बाप दादा से तल्लक नहीं रखते। सो हर एक कबीले को, हर उन तमाम लोगों को जो यहूदियों से तल्लक नहीं रखते थे, बाइबल मुकद्दस और उस दौर के और आज के दौर के लोग उन्हें क्या कहते हैं? गैर कौम। हम सब गैर कौम थे, जब हमने यीशु मसीह पर ईमान रखा तो हम उसके क्या बन गए? उसके लोग बन गए, यीशु मसीह में खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। यूहन्ना कहता है, जितनों ने यीशु को कबूल किया खुदा ने से उन्हें क्या किया? अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। गलतियों के खत में कहता है कि रूह अब हमारे अंदर ये कहता है कि हम गुलाम नहीं बल्कि बेटे हैं। रोमियो 8 बाप में पालूस कहता है कि खुदा का रूह हमारे साथ ये मिलकर गवाही देता है कि तुम उसे बाप और अब्बा कहकर पुकार सकते हो। ये वो बहुत सी बरकात हैं। सो यही वो भेद था जो उम्मतों से, कौमों से, नबियों से और बहुत से दूसरे, और हालांकि लिखा है कि आसमान के फरिश्तों से ये बात पोशीदा थी। आगे चलकर हम देखेंगे कि वो बात और किस किस से पोशीदा थी। इसलिए हम सबको ये राज दिया गया है, इस राज को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। यीशु मसीह का बंदा पालूस इस राज से वाकिफ था, अब हम वाकिफ हैं। सो सवाल ये है कि क्या हम इस राज को दूसरों तक पहुंचाते हैं या फिर इसे राज ही रखेंगे? यसु मसीह के शिगिर्दों को जब पता चला कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो उन्होंने उस खबर को राज नहीं रखा, उसे छुपाकर नहीं रखा। क्या किया? सबको जाकर बताया कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। सो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि वो जिंदा है, आज भी उसकी कब्र खाली है, आज भी उसकी सलीब खाली है, वो कादर मुतलक के दाहें हाथ बैठा है और वहाँ से वो वापस आएगा और जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा। सो ये राज आप सबको हासिल है। अब आप पर ये बात है कि इसे राज रखते हैं या फिर इस राज को बताते हैं। आए हम खुदा के हुजूर झुकें।